الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سید الشہداء کی جانب اپنے دلوں کو متوجہ کیجئے اور میرے ساتھ مل کر سلام کے ان جملوں کو دہرائیے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين، الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين، والصلاة والسلام على أشرف الكونين، رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صدق مولانا العظيم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. شام وطن کے عنوان سے یہ منعقدہ مجلس، جو ہمارے سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے، میرا عنوان گفتگو آفاق مہدویت، اور در حقیقت اس عنوان میں مہدویت کا فقط ایک ہی افق بیان کر پایا کہ جسے آج خلاصتاً مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. حضان محترم، گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی कि महदवियत का अकायद से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। अकायद या तो मारिफत खुदा है, हमने महदवियत का इनसे रब आपकी खिदमत में पेश किया, ये पूरे अशरे का खुलासा है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं मैं। महदवियत का नबुवत खासा यानी हमारे नबी की नबुवत से ताल्लुक हमने पेश किया। महदवियत का नबुवत आमा यानी आदम से लेकर ईसा तक की नबुवत से जो ताल्लुक है, हमने इस बहस को तीन हिस्सों में तकसीम किया था। पहली बहस सुनने अंबिया और इमाम जमान, दूसरी बहस मवारी से अंबिया और इमाम जमान, तीसरी बहस खसाए से अंबिया और इमाम जमान। यहाँ नबुवत और महदवियत की बहस मुकम्मल हुई, फिर महदवियत और इमामत की बहस का आगाज हुआ। इस बहस को भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, महदवियत और इमामत आम्मा की बहस यानी इमाम अली से लेकर 11वें इमाम तक का इमाम जमाना से ताल्लुक, और दूसरी बहस महदवियत और इमामत खासा इमाम जमाना और सैयदुल शुहदा आका व मौला हजरते अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम। इन दोनों हस्तियों का इर्तिबात, इन दोनों हस्तियों का ताल्लुक, और इसी में बहस जारी थी। आज दोपहर रोजे अरबाइन की गुफ्तगू में चंद ताल्लुक पेश किए थे। पहला ताल्लुक जो कल शब की मजलिस में पेश हुआ कि अल्लाह ने इमाम जमाना को नस्ले सैयदुल शहदा में करार दिया है। दूसरा ताल्लुक कि अल्लाह ने इमाम जमाना को ही इमाम हुसैन का इंतकाम लेने वाला करार दिया। जिमना नर्स किया था, अहम बात है इसलिए तकरार कर रहा हूं कि ये इम्तिहान कोई बशरी तकाजे या ख्वाहिश की बिना पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि वली खुदा का खून बहा के जो खुदा के जिम्मे है, वो कार खुदावंदी मेरे वक्त के इमाम के हाथों से लिया जाएगा। तीसरा और अहम तरीन और इंतहाई गहरा ताल्लुक के जिस पर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, और वो ये जो आज दोपहर की मजलिस में पेश किया कि जब मखलूकात में शोर गौगा पैदा हो गया, जब मखलूकात हुसैन के कत्ल की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी या अजीम बार उठा नहीं पा रही थी, जब फरिश्ते फरियाद कर रहे थे, जब आसमानों जमीन में तहलका मचा हुआ था हुसैन की शहादत और उनके कत्ल पर, तो इन इस तमाम रूए जमीन को, इस तमाम कायनात को, तमाम मखलूकात को अल्लाह ने जब हुदू बख्शा, जब सुकून और इत्मीनान बख्शा, तो कैसे बख्शा? मेरे वक्त के इमाम के वजूद नूरानी की ज्यारत करा कर बख्शा, और ये इत्मीनान दिला दिया इस मखलूक के, ये सब्र करो, मैं इंतकाम जरूर लूंगा लेकिन इंतकाम इस हस्ती के हाथों से लूंगा। ये तीसरा ताल्लुक। चौथा ताल्लुक मैंने कल अर्ज किया था जिमनन कि जब 12वें इमाम तशरीफ लाएंगे तो अपने जद के नाम का शिआर बुलंद करेंगे, या लतारातिल हुसैन का शिआर बुलंद करेंगे, कोई और शिआर और नारा इमाम बुलंद नहीं फरमाएंगे। और जब मखलूकात को अपना तारुफ करवाएंगे तो वो भी अपने जद हुसैन के जरिए से करवाएंगे। अल्लाह अकबर। आज यहीं से गुफ्तगू को, इस आखिरी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इमाम जमाना चूंकि इंतकाम खून हुसैन लेने वाले हैं, ये एक सबब है कि उनका शिआर या लतारातिल हुसैन होगा। यहां उलमा इस शिआर का एक और मख्फी सबब बयान करते हैं, और सबब बड़ा तफसील है, और वही सबब आज की गुफ्तगू कि इमाम जमाना फकत अपने जद हुसैन के नाम का नारा इस वजह से बुलंद फरमाएंगे कि इमाम जमाना और इमाम हुसैन की जिम्मेदारियों में कार इमामत में जाहिरी तौर पर भी बहुत ज्यादा मुशाबहत और मुताबिकत पाई जाती है। यानी अगर इमाम जमाना के कयाम को देखा जाए तो ये दर हकीकत इमाम हुसैन के खुरूज के जैसा ही लगता है। तीन बुनियादी जहते उलमा बयान करते हैं, तवज्जो कीजिएगा। पहली मुताबिकत और मुमासिलत क्या है कि इमाम हुसैन और इमाम जमाना के तहरुक और कयाम और खुरूज जो चाहे नाम दे दीजिए, इन दोनों का जाहिरी हदफ एक ही है। दूसरी मुशाबहत और मुमासिलत वो ये कि जब इमाम हुसैन मदीने से करबला तशरीफ ले जा रहे थे, तो जिस नुक्ते पर लोगों से खिताब किया, जिन नुकात को बयान किया कि जिसके जरिए से लोगों को अपनी नुसरत के लिए बुलाया, इमाम जमाना भी हूबहू वही नुकात बयान करके मखलूक को अपनी मदद और नुसरत की जानिब बुलाएंगे। तीसरी मुशाबहत, अहम तरीन मुशाबहत और मुमाथलत यह है कि जो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली इमाम हुसैन ने इख्तियार की थी अपने पूरे सफर में, वही हिकमत अमली वारिस हुसैन यानी इमाम जमाना अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ की भी होगी। तवज्जो कर रहे हैं, ये था आज की गुफ्तगू का तारुफ। अब आइए जरा इनमें से हर एक नुक्ते की तफसील की तरफ रुजू किया जाए। सबसे पहली और बुनियादी बात, इमाम हुसैन का मदीने से निकलने का एक जाहिरी हदफ, इन जुमलों पर बहुत गौर कीजिएगा, ये बड़ी नाजुक मंजिल है। जब हम आइम्मा के किसी भी काम के मकसद या हदफ पर बात करें तो ये इतनी आसान बात नहीं होती कि जिसके मुंह में जो कुछ आए कहता चला जाए अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, के सियासी मामलात में ढालता चला जाए इन बातों को। नहीं अजीजों, कार इमामत के हदफ की बात होगी तो फकत इमाम के कलाम से होगी। और अगर इमाम हुसैन हमें किसी हदीस में किसी रिवायत में अपने मदीने को छोड़ने का मकसद बयान करें, हदफ बयान करें, तो ये नहीं समझा जा सकता, ये नतीजा हरगिज नहीं लिया जा सकता कि इमाम के मदीने को छोड़ने का फकत यही एक हदफ था और हदफ मुनहसिर है इसे एक नुक्ते में। तवज्जो कर रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आपको सुनने मिलती हैं मुआशरे में। अगर इमाम हुसैन ने अपने मदीने को तर्क करने का कोई हदफ किसी हदीस में बयान किया, जैसा कि बाज रिवायात में बाज आदाब बयान हुए हैं, तो वो हदफ फकत इस बात पर दलालत करेगा कि दर हकीकत इमाम के मदीने से निकलने के बहुत से जाहिरी और बातिनी अहदाफ में से ये एक हदफ है। तवज्जो है, लिहाजा अगर कोई हदफ बयान भी हो रहा हो जैसा कि हम हदीस की रोशनी में पेश करेंगे, तो किसी को यह हक नहीं है कि मुकम्मल करबला को इसी एक हदफ के मीजान पर तोल ले या करबला की कीमत का तायुन इस एक हदफ के मीजान पर करे कि जो आका ने हमारे सामने बयान कर दिया। आइम्मा ने वो बयान जो बयान किया वो उससे बहुत कम है जो हमसे छुपा लिया। क्यों? क्योंकि हमारी अकलें उस अभास को उन बातों को दर्क नहीं कर सकती थी जो आले मोहम्मद ने हमें नहीं बताई। लिहाजा जरूरी है ऐसे मुश्किल मामलात में, ऐसे नाजुक मरहले में बेहतरीन और आखिरी तरीन जुमला यह होना चाहिए कि या खुदा जाने हिकमत या हुज्जत खुदा जाने। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पूरी तमहीद को जिक्र करने का मकसद और मतलूब ये था कि अब जो आगे बातें बयान होगी उनसे कोई सूए इस्तेफादा न कर सके। यहां तक बात आ गई, अब तवज्जो कीजिएगा। जब सैयदुल शहदा मदीने से निकल रहे थे, खुरूज फरमा रहे थे, तो आका ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया से मुलाकात फरमाई। वहदत हदफ कैसे इमाम हुसैन और इमाम जमाना का वो हदफ जो आइमा ने बयान किया उसमें मुमासिलत पाई जाती है। जब मदीने से तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने भाई मोहम्मद हनफिया से खिताब किया, आखिरी मुलाकात की, और उसमें मोहम्मद हनफिया को वसीयत फरमाई। और उस वसीयत के जुमले क्या हैं आपने बारह सुने होंगे, आज फिर सुन लीजिए। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बकीरन वला मुफसिदन वला जालिमा, ना मैं किसी किस्म के तकब्बुर की वजह से निकल रहा हूं, न मैं अना परस्ती में निकल रहा हूं, न मैं जमीन पर फसाद फैलाने जा रहा हूं, न मैं जुल्म करने जा रहा हूं। मौला फिर क्यों मदीना छोड़कर तशरीफ ले जा रहे हैं? फरमाते हैं वह इन नमा खरज तू, मैं क्यों निकल रहा हूं मदीने से? अतलुबुल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अपने नाना रसूलिल्लाह की उम्मत में इस्लाह की खातिर निकल रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, यहां इस जुमले से किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि नतीजा निकाले कि इमाम हुसैन के निकलने का फकत यही एक मकसद था। नहीं अजीजों, तवज्जो कीजिए, ये फकत एक मकसद था जो इमाम ने बयान किया। और फिर यहां ये भी वादे हो जाए कि इमाम जिस शय को, जिन बातों को इस्लाह कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारी बशरी गैर मासूम नाकिस अकलें भी इस्लाह से वही मुराद समझ सके। यही तो वजह है कि इमाम तकी ने फरमाया कि जो शख्स बगैर इल्म के इस्लाह करने निकलता है वो इस्लाह से ज्यादा फसाद फैलाता है। वो इमाम मासूम है, वो जानते हैं कि इस्लाह का मतलब क्या है, इस्लाह कैसे मुतहक्किक होती है और किन रास्तों पे चलकर होती है। हम गैर मासूम है, हम जाहिल हैं, हम इमाम की बताई हुई इस्लाह के एक जुज को समझ सकते हैं, मुकम्मल बहस और मफहूम इस्लाह का कि इमाम की क्या मुराद थी, इमाम क्या चाह रहे थे, इस मुकम्मल बहस का इहाता नहीं किया जा सकता। अगर यहां तक ये बात वाजे हो गई, थोड़ी सी मुश्किल बातें थी, मुझे अंदाजा है मेरे बुजुर्गान यकीनन मेरे साथ हैं इस सफर में। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन के कलाम को मुकम्मल करूं, मौला ने क्या फरमाया, व इन्नमा खरजतु, मैं क्यों जा रहा हूं, अतलुबुल इस्लाह, इस्लाह चाहता हूं मैं, कहां पर, फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, अपने नाना रसूल अल्लाह की उम्मत में इस्लाह चाहता हूं। उरीदु अन असीर बसीरत जद्दी व अभी, मैं चाहता हूं कि अपने नाना और अपने बाबा अली मुर्तजा की सीरत पर चलूं। लिहाजा एक जाहिरी हदफ कि जो इमाम हुसैन के मदीने से निकलने का इमाम ने हमें बताया, हमारी क्या औकात, हमारी अकलों की क्या औकात कि हम इमाम के कामों की हिकमतों और अहदाफ को हकीकत में दर्क कर सके। जो आले मोहम्मद ने बता दिया हमने मान लिया, जो नहीं बताया आले मोहम्मद जाने या उनका खुदा जाने। ये बहुत अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम जुमला है, इसको अपने अधान आलिया में मरकूज और महफूज करके इस बहस को आगे बढ़ाइएगा। तवज्जो है, इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे हैं तो अपने जद की उम्मत में इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। उरीद अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ अच्छाई का हुक्म देने जा रहा हूँ, मैं मुनकर और बुराई से रोकने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन निकल रहे हैं, हदफ जाहिरी जो इमाम ने बयान किया वो क्या है, इस्लाह है। अब मेरा सवाल है, जब मेरे वक्त के इमाम तशरीफ लाएंगे तो उनके तशरीफ लाने का, उनके जहूर का हदफ क्या होगा? कायनात के रसूल बता गए, अमलाउल अर्दा किस्तन व अदला तमाम मुले अतुलमन व जौरा, जिस तरह से रूए जमीन कायम के दहूर से पहले जुल्मो जौर से भर चुकी होगी, कायम आकर उसे उसी तरह अदलो इंसाफ से भर देंगे। मेरा आपसे सवाल है, ये इस्लाह नहीं है तो क्या है? तवज्जो कर रहे हैं, नतीजा ये हुआ कि हुसैन भी जब मदीना छोड़ रहे हैं तो इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, और कायम आले मोहम्मद भी जब जहूर फरमाएंगे तो इस्लाह के लिए फरमाएंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यहां एक सवाल उठता है, यकीनन मेरे जागते हुए सामईन और नादरीन के जहनों में भी उठा होगा कि हमने कैसे इसे एक हदफ कह दिया, अगरचे दोनों हस्तियां इस्लाह के लिए निकल रही हैं, लेकिन इमाम हुसैन के निकलने का और इस्लाह का दायरा कार क्या है? उरीदु अन इन्नमा खरजतु अतलुबुल इस्लाह फी उम्मते जद्दी, हुसैन जब निकल रहे हैं तो अपने नाना की उम्मत में, उम्मत मुस्लिमा में इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। इमाम जमाना जब तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा? यमलाउल अर्दा, पूरी रूए जमीन में इस्लाह हो जाएगी। फर्क तो है, महसूस कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं, सवाल वाले मेरे नौजवान खुसूसी तवज्जो कीजिएगा इस बहस पर। तो फर्क तो है, तो कैसे एक हदफ कहा जा रहा है? तवज्जो कीजिएगा, एक मिसाल से इस फर्क की हकीकत को समझाना चाहता हूं ताकि ये वाजे हो जाए कि ये फर्क कहां पर पाया जाता है। नौजवानों बच्चों के लिए एक बहुत आसान सी मिसाल देता हूं। एक बल्ब आपने लिया, एक, और ये बल्ब 1000 वोल्ट का है। अब मिसाल बच्चों और नौजवानों के अजहान के करीब करने के लिए दे रहा हूं। एक बल्ब आपने लिया कि जो 1000 वोल्ट का है, आपने उस बल्ब को रोशन किया लेकिन एक मजबूत डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में बंद करके रोशन कर दिया। क्या बल्ब 1000 वोल्ट की ताकत रखता है? जवाब दीजिए। यकीनन रखता है। उस 1000 वोल्ट के बल्ब ने कितनी जगह को रोशन किया? फकत उसे एक छोटे से डब्बे को। क्यों? क्योंकि बल्ब की रोशनी उससे बाहर नहीं आ रही। यही बल्ब आप इसी इमाम बारगाह के हॉल में लगा दीजिए, यही 1000 वोल्ट का बल्ब है, कितना हिस्सा रोशन करेगा? ये पूरा हॉल रोशन करेगा। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों? क्या बल्ब की ताकत में कोई फर्क है? नहीं, बल्ब दोनों जगह वही 1000 वोल्ट का है, तो फिर फर्क कहां से आया? वहां छोटे से डिब्बे में रोशनी कर रहा है, यहां पूरे कमरे को रोशन किए दे रहा है। जवाब ये होगा कि फर्क बल्ब की सनाअत में नहीं है, फर्क बल्ब की रोशनी और उसकी वोल्टेज में नहीं है, फर्क बल्ब की ताकत में नहीं है, फर्क उन जुरूफ में है कि जिन जुरूफ में उस बल्ब को रोशन किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह हुसैन भी वही नूर है, इमाम जमाना भी वही नूर है। इस नूर की रोशनी और ताकत में, इस नूर की यगानियत में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो हालात और जुरूफ में है। हुसैन के जमाने में इतनी सलाहियत नहीं थी कि हुसैन की इसलाह को दुनिया भर तक कबूल किया जाता, लिहाजा वहां इसलाह के पहले दर्जे को अमल किया जा रहा है, वहां नाना की उम्मत से इसलाह का आगाज किया जा रहा है। जबकि जब कायम तशरीफ ले आएंगे तो उम्मत में, इस दुनिया में यह सलाहियत पैदा हो चुकी होगी, दुनिया का जर्फ वसी हो चुका होगा कि पूरी दुनिया में कायम की हिदायत का नूर फैल सके। लिहाजा दोनों हस्तियों का हदफ इसलाह ही है। हुसैन के जमाने में इतनी ताकत नहीं थी कि हुसैन के नूर की ताब ला सके, इमाम जमाना के दौर में जमीन में इतनी वसअत आ जाएगी कि ये आका की इस्लाह की तहरीक को बर्दाश्त कर सके। अगर ये मतलब, ये बात, ये नुक्ता वाजे है मेरे नौजवान, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों के लिए, तो एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों? क्या लतीफ बहस है। फर्क हुसैन और इमाम जमाना में नहीं है, फर्क जुरूफ में है, फर्क हालात में है। इन हस्तियों में मुक्तदी बराबर का मौजूद है। अगर फनी ताबीर कहूं अपने हौजवी दोस्तों के लिए, हस्तियों में मुक्तदी बराबर का है, लेकिन सामने मानिअ है कि जो हुसैन को मुकम्मल रूए जमीन की इसलाह से रोके रहे हैं कि फकत नाना की उम्मत में इसलाह कर सकते हैं, जबकि जब कायम तशरीफ लाएंगे तो रूए जमीन में इस कदर ताकत और इस कदर सलाहियत पैदा हो चुकी होगी कि मुकम्मल रूए जमीन की इसलाह की जाएगी। ये क्या है? ये वो पहला नुक्ता है कि जिसमें इमाम हुसैन और इमाम जमाना में मुताबिकत और मुमाथिलत पाई जाती है, कि दोनों का वो हदफ के जो बयान हुआ रिवायत में वो मुश्तरक है, यकसा है, एक जैसा है। जरा बात को एक मंजिल आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नुक्ता कि जिसमें ये दोनों हस्तियां इंतहाई मुश्तरक और मुमाथिल हैं, वो क्या है? इन दोनों का खिताब, कि जब लोगों को अपनी मदद और नुसरत के लिए बुलाएंगे तो दोनों का खिताब यकसा होगा, एक जैसा होगा। वही नुकात होंगे कि जिस पर जद हुसैन ने बात की थी, वही नुकात होंगे कि जिन पर पोता इमाम जमाना बात करेगा। वो क्या नुकात हैं? बुनियादी तौर पर मुहल्लिलीन और मुबस्सरीन ने 3 नुकतों में इस बात की तकसीम की है कि जब आका हुसैन लोगों को अपनी नुसरत के लिए बुला रहे थे तो 3 नुकात थे जो आका हुसैन के बयान में, उनके खिताब में थे, और वही 3 नुकात इमाम जमाना के खिताब में भी पाए जाएंगे। अब यहां सवाल है, हमें कैसे पता चला इमाम जमाना क्या खिताब करेंगे? तो पूरे अशरे में यही तो बात हो रही थी कि अइम्मा ने जा बजा आका इमाम जमाना का जिक्र किया, एक 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 कदम के जो आका उठाएंगे अइम्मा ने पहले से चाहने वालों को बता दिया ताकि चाहने वाले जहनी तौर पर आमादा हो जाए। इमाम सादिक से, इमाम बाकिर से, अइम्मा ताहिरीन से हमें मुख्तलिफ जराए और वसाइल से वो खुतबात पहुंचे जो इमाम जमाना बाद में इरशाद फरमाएंगे। आले मोहम्मद का खासा है मुस्तकबल बताना, गैबी अखबार को बताना। ये तक बता गए कि हमारे कायम जब जहूर फरमाएंगे तो क्या खिताब अंजाम देंगे। इमाम हुसैन के खिताब की तरफ निगाह कीजिए। 3 बुनियादी 3 अबरज नुकात। पहला नुकता, आले मोहम्मद की मुसीबत और हक तलफी को बयान करना, लोगों के सामने ये मुद्दा रखना, ये दावा रखना कि हम आले मोहम्मद की हक तलफी हो रही है। यही जब इमाम जमाना तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहला नुक्ता यही रखेंगे कि आले मोहम्मद को उनका हक दिया जाए। देख रहे हैं अजीजों। दूसरा नुक्ता, इमाम हुसैन ने दूसरा जो अहम नुक्ता बारहा इरशाद फरमाया, उसकी तरफ इशारा किया, वो क्या है कि इमाम हुसैन के दौर में जो दुनिया के हालात थे, जो वाकयात थे, जो दुनिया की कैफियत थी, इमाम हुसैन ने लोगों को इस दुनिया की हकीकत को दिखलाया। मिसाल पेश कर दूं, वो जुमला आप सबने सुन रखा होगा, अन्नासु अबीदुद दुनिया, आका हुसैन दुनिया की हकीकत, अपने जमाने में दुनिया की हकीकत लोगों को बता रहे हैं, अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हो चुके हैं, वद्दीनुल्लाइकुन अला अलसनतिहिम, दीन उनकी जुबानों का चटखारा बन के रह गया है, मा यहूतूनहू मा दर्रत माइशो, इसके चटखारे लेते रहते हैं, इसका मजा लेते रहते हैं, दीन की बातें करते रहते हैं जब तक उनकी माइशतें सही चल रही हैं। फइजा मुहिसू बिल बला, जब इन लोगों को आजमाइश में उतारा जाता है, कल्लत दयानून, तो हकीकी दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो कर रहे हैं लोग, हुसैन हुसैन कर रहे थे, 18,000 के करीब खत लिखे गए कूफे की जानिब से, लेकिन जब इम्तिहान की बारी आए तो कल्लत दयानून, फकत 72 रह गए। ये इमाम हुसैन के दौर में, जमाने में दुनिया की पस्ती और दुनिया की हकीकत थी, जो दूसरा अहम नुक्ता था इमाम हुसैन के बयानात में, उनके खुतबात में। इमाम जमाना भी जब तशरीफ लाएंगे तो अपने जमाने के लोगों को दुनिया की हकीकत से आशना कराएंगे, लोगों को मुखातिब करके कहेंगे, अला या अहलल आलम इन दुनिया कद करुब फनाउहा, ऐ दुनिया वालों, अब इस दुनिया का फना, इस दुनिया का अख्तिताम करीब आ चुका है, वह अदीनतिल वदा, अब दुनिया ने अलविदा ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी जमाना होगा। ये क्या है? ये इमाम जमाना लोगों को दुनिया की, अपने दौर की, अपने जमाने की हकीकत ही तो बता रहे हैं, ये मुमासिलत और मुशाबहत। तीसरा अहम नुक्ता कि जो इमाम हुसैन के खिताब में पाया जाता है, वो क्या है? तवज्जो है अजीजों, समाते आमादा है, मैं तीसरा नुक्ता पेश करने लगा, एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद आले मोहम्मद का। तवज्जो कीजिएगा, जब इमाम हुसैन अपने खिताब में आले मोहम्मद के मसाइब और उनकी हक तलफी को बयान कर चुके, जब इमाम हुसैन ने लोगों की आंखों से दुनिया के पर्दे को हटा दिया, दुनिया की हकीकत बता दी, अब इसके बाद तीसरी अहम बात, इमाम हुसैन क्या करेंगे? अब नतीजा देंगे, अब लोगों को हक की नुसरत की तरफ बुलाएंगे। अला तरौना अन्नल हक ला युअमरु बिह क्या तुम नहीं देख रहे कि अमर के मारूफ का, नेकी का अमर नहीं किया जा रहा, वह अन्नल मुनकर ला युतनाहा अन के बुराई से रोका नहीं जा रहा, फल यरगबिल मुमिनु फी लिकाइल्लाह, तो अब ऐसे जमाने में कि जब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना हो रहा हो, इमाम हुसैन अपने जमाने की बात कर रहे हैं, कोई कयास नहीं करे किसी और जमाने पर, कलाम इमाम की हकीकत फकत इमाम जानते हैं। बार बार इस अशरे में इस जुमले को पेश करता रहा हूं, और पूरी महदवियत की बहस करने का एक बुनियादी तरीन, अगर एक नुकाती एजेंडा और मकसद मांगा जाए तो वो ये है कि हमारे दिलों में आले मोहम्मद के लिए तस्लीम का मादा पैदा हो जाए। इमाम जो कह दे उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दे, ना उससे एक कदम आगे बढ़े ना उससे एक कदम पीछे हटे। अगर ऐसा अपने आप को बना लिया तभी दौरे गैबत में अकीदा महफूज रख सकेंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद का। तो इमाम किस किस्म के अमर बिल मारूफ की बात कर रहे हैं? इमाम जाने। इमाम किस किस्म के नहीं अनिल मुनकर की बात कर रहे हैं? हकीकत इमाम जाने। जाहिरी माना होते हैं, हकीकी माना इमाम जाने। इमाम हुसैन ने तीसरा नुक्ता अपने खुतबे में क्या बताया? लोगों को हक की तरफ बुलाया, अमर बिल मारूफ की तरफ बुलाया, अपनी जानिब बुलाया। इमाम जमाना भी जब तशरीफ लाएंगे, पहले आले मोहम्मद के मजालिम और उनकी हक तलफी को बयान करेंगे, दूसरे मरहले में दुनिया की हकीकत आश्कार करेंगे, तीसरे मरहले में लोगों को नुसरत हक की तरफ ही तो बुलाएंगे। अरे खुद अपनी नुसरत की तरफ बुलाएंगे, और यही आले मोहम्मद ही तो हक हैं, इनके अलावा दुनिया में हक है क्या? यही वजह है ना कि ज़ियारत जामे कबीरा में क्या पढ़ते हैं, इन दुकर अल खैर, अल्लाह अकबर, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद का। ज़ियारत जामिया में क्या जुमले कहते हैं? अल्हक्कु माकुम व फीकुम व मिनकुम व इलैकुम, अल्लाहु अकबर। ए आले मोहम्मद, हक आपके साथ भी है, आप में भी है, आप से ही शुरू होता है, आप पर ही इख्तिताम पा जाता है। अल्लाह अकबर। यही तो रसूल का इशारा था ना, कि जब फरमाया था अली माल हक, अली हक के साथ है, कोई ये ना समझे कि अली हक की पैरवी कर रहे हैं, अगला जुमला फरमा दिया वल हक माल अली, और हक भी अली के साथ है। और अभी भी कोई ये गुमान ना करे कि हक कोई शय है कि जिसकी पैरवी अली करते हैं, नहीं, रसूल ने जुमला क्या अरसाज फरमाया, यदूरुल हक हैसुमा दार अली, अरे जिस तरफ अली मुड़ जाए उस तरफ हक मुड़ जाया करता है, गोया अली हक के पीछे नहीं चलते, हक उस वक्त तक हक रहता है जब तक वो अली के नक्शे कदम पर चलता रहे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तवज्जो कर रहे हैं अजीजों। वही खिताब, वही तीन बुनियादी नुकात के जो इमाम हुसैन के कलाम में पाए जाते थे, वही आका इमाम जमाना के खिताब में भी पाए जाएंगे। बस दामने वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, आखिरी मरहला गुफ्तगू की तरफ मुंतकिल हूं। पहली शय वो हदफ के जो जाहिरन अइमा ने बयान किया, उसमें इमाम हुसैन और इमाम जमाना में मुशाबहत और ममाथलत तामा पाई जाती है। दूसरी बात, दूसरा नुकता, कि वो खिताब, वो बयान के जो इमाम हुसैन ने जारी फरमाया, बिल्कुल वही नुकात, वही खिताब इमाम जमाना भी जारी फरमाएंगे। तीसरा और अहम नुकता, और वो मुश्तरक बात इन दोनों हस्तियों के खुरूज में, वो क्या है कि वो जो हिकमत अमली इमाम हुसैन ने अपनाई थी, वो जो स्ट्रेटजी इमाम हुसैन की थी, वही हिकमत अमली और स्ट्रेटजी मेरा वक्त का इमाम भी अपनाएगा। अब यहां इस हिकमत अमली के जेल में दो बुनियादी नुकात पेश किए जा सकते हैं। मैं देखूंगा दामन वक्त में जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से आपकी खिदमत में इशारतन पेश करूंगा और फिर गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। यही छोड़ दूंगा आफाक मैदवियत के इस बरस के बहस को। हिकमत अमली में पहली अहम तरीन चीज के जो आका हुसैन की हिकमत अमली में नजर आती है, लोगों के जहनों में एक गुमान है, एक वहम है, वो क्या है कि आका हुसैन मदीने से जंग करने निकले थे। अल्लाहु अकबर, बड़ी भारी बात लग रही है ना, आका हुसैन मदीने से जंग करने नहीं निकले थे, आका हुसैन उम्मत की इसलाह के लिए निकले थे। इमाम हुसैन ने जब भी असलहा उठाया है, जब भी तलवार चलाई है, तो वो दिफाई अंदाज में चलाई है। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम अमनो आश्ती का दीन है, ये इस्लाम सिल्म अमान का दीन है। इस्लाम ने हमें ये तालीम नहीं दी है कि कहीं तलवार के जरिए से, कहीं असलहे के जोर पर कोई बात मनवाई जाए, किसी जोर पर कोई बात मनवाई जाए, किसी जमीन पर कब्जा किया जाए। असलन इमाम हुसैन भी दर हकीकत अपने नाना रसूल अल्लाह की सीरत पर अमल कर रहे थे। पूरी जिम्मेदारी से, तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, तहकीक कीजिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा, इसी नतीजे तक पहुंचेंगे कि खुद रसूल अल्लाह के जितने गजवात हैं, बड़ी बड़ी जंगें सुन रखी है ना आपने रसूल की, रसूल के जितने गजवात थे, रसूल ने जहां पर भी जंग की है, जहां पर भी असलहा उठाया है, वो सब का सब दिफाई उठाया है। तवज्जो कर रहे हैं। अब यहां लोगों के जहनों में सवाल उठेगा, और हम बैठे ही सवालों के जवाब देने के लिए हैं। सवाल क्या उठेगा कि जंगे बदर तो समझ आता है, कुफार ने मदीने पर हमला किया, जंगे अहद तो समझ आता है, कुफार बदला लेने आ रहे थे, ये खैबर का क्या माजरा है, वहां तो रसूल लश्कर लेकर तशरीफ ले गए थे, ये तबूक का क्या माजरा है, वहां भी रसूल लश्कर लेकर चले थे। तो अजीजों तवज्जो कीजिएगा, दिफा की दो किस्में हुआ करती हैं। दिफा की पहली किस्म ये होती है कि जब दुश्मन बढ़ के मेरे घर पे हमला कर दे, अब मैं अपने घर में रहकर उससे दिफा करूं। लेकिन दिफा की एक दूसरी किस्म भी है, और इस किस्म में भी जब दिफा की जरूरत है, फिर कह रहा हूं कोई फायदा ना उठाया जाए इन बातों से, जो दूसरी किस्म है उसका तायुन भी इमाम मासूम ही बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। दिफा की दूसरी अकली किस्म क्या है कि अगर मुझे पता है, मालूम है, यकीन है, मैं जानता हूं कि फलां जगह पर एक बिल है और इस बिल में एक सांप छुपा है, और वो सांप कुछ देर बाद अपने बिल से निकलेगा और मुझे डस लेगा, तो अब दिफा का तकाजा क्या है कि इससे पहले वो सांप अपने बिल से निकल के बाहर आए, मैं खुद उसके बिल में घुसकर उसे हलाक कर दूं। ये दिफा की ही एक किस्म है। रसूल ने जब खैबर पर हमला किया था तो किसी माल गनीमत की लालच में नहीं किया था, किसी जमीन पर कब्जे के लिए नहीं किया था, जैसा कि रसूल के बाद वाले अदवार में होता रहा। रसूल ने जब हमला किया था तो इसलिए किया था कि रसूल के पास खुफिया बातें मौजूद थी, खुफिया बातें आ रही थी, पहुंच रही थी कि ये खैबर के यहूदी आप पर और मदीने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रसूल ने जब तबूक की जंग लड़ी है तो इसलिए निकले क्योंकि खबर हो चुकी थी कि फलां जगह से एक लश्कर मदीने पर हमला करने आ रहा है। अल किस्सा मुख्तसर, रसूल ने जितनी जंगें फरमाई, जितने गजवात में शरीक हुए, जहां जहां असलहा उठाया वो सब का सब दिफाई था। इस्लाम हरगिज तलवार के जोर पर नहीं फैला, और ना खुदा की ये मर्जी और मंशा है, ना खुदा का ये इरादा और ना ये चाहत है कि इस्लाम असलहे के जोर पर फैले। इस्लाम कहते हैं तस्लीम को, तस्लीम होती ही कल्ब से है, और तलवार के जोर पर सर तो झुकाया जा सकता है लेकिन दिल नहीं झुकाए जा सकते। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो कर रहे हैं, ये है रसूल की सीरत। ला इकराह फिद्दीन कद तबैयना रुश्दु मिन अलगई, जब हिदायत और गुमराही के रास्ते जुदा हो गए, जब अली का और गैर का रास्ता जुदा हो गया, तो अब दीन में कोई कराहियत, कोई जबरदस्ती नहीं है। खुदा ने सबको अक्ल की नेमत से नवाजा है, सबके लिए दलीलों को वाजे कर दिया। दीन इस्लाम दलील से समझ कर एतकाद और यकीन रखने का नाम है। तलवार के जोर पर कलमा पढ़ने को इस्लाम नहीं कहते अजीजों। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी तरह बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, दलील देना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह से रसूल ने असलहा फकत दिफाई अंदाज में चलाया, इसी तरह इमाम हुसैन ने भी जहां भी तलवार उठाई है, जहां भी जंग फरमाई है, जहां किताल किया है, वो सब का सब दिफाई था। इमाम हुसैन जंग करने नहीं निकले हैं, इमाम हुसैन मुआमलात को बेहतर बनाने निकले हैं, उम्मत की इसलाह के लिए निकले हैं। और उस वक्त उम्मत की इस्लाह के लिए निकले हैं कि अगर उम्मत इस इस्लाह पर जाहिरी तौर पर तैयार हो। ये मेरा दूसरा नुक्ता है, वक्त हुआ तो इंशाल्लाह पेश करूंगा, तवज्जो कीजिएगा। कोई सवाल करे कि दलील क्या है, अब दलीलें सुनते चले जाइए। इमाम हुसैन मदीना में है, हाकिम के हुक्म पर मदीने के गवर्नर ने इमाम हुसैन को दरबार में बुलाया। किस काम के लिए बुलाया था? बैअत तलबी के लिए बुलाया था। इमाम हुसैन क्या तनहा गए? नहीं, अपने साथ बनी हाशिम के नौजवानों को ले गए। क्या हुक्म दिया? अगर दरबार में, ये तो तारीख है ना, आप सबने सुन रखी है, मैं फकत नतीजे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जिसकी तरफ आम तौर पे लोग तवज्जो नहीं करते। इमाम हुसैन ने हुक्म क्या फरमाया कि अगर दरबार में मेरी सदा बुलंद हो जाए तो तुम दरबार में दाखिल होना, ये दिफा नहीं है तो क्या है? दरबार में तनहा गए हैं, और जब हुक्मरान ने, गवर्नर ने बैअत मांगी, इमाम ने इनकार किया, एक दूसरा शख्स बैठा हुआ था उसने कत्ल की धमकी दी, तो अब इमाम हुसैन की सदा बुलंद हुई, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? ये सुनकर बनी हाशिम के जवान दरबार में दाखिल हो गए। ये तो तारीख का हिस्सा है ना। मेरा आपसे सवाल है कि अगर इमाम हुसैन असलहे के जोर पर कामयाबी हासिल करना चाहते तो बनी हाशिम को दरबार के बाहर ही क्यों रखते? क्या मदीने में इमाम हुसैन का उस गवर्नर को कत्ल करके, वासिले जहन्नुम करके मदीने पर बनी हाशिम का काबिज हो जाना क्या कोई मुश्किल बात थी? क्या कोई बनी हाशिम को रोक सकता था कि मदीने में हुकूमत ना बनाए? क्या इमाम हुसैन के बनी हाशिम के जवान काफी नहीं थे कि उसी दरबार में इमाम अपने साथ लेकर दाखिल होते और हाकिम को उसी जगह, गवर्नर को उसी जगह कत्ल कर देते? अरे बनी हाशिम के जवान तो छोड़ दीजिए, क्या एक अब्बास काफी नहीं था हुसैन की फतह के लिए? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। असलन ये हो गई पहली दलील, दिल मुतमईन है, बात आगे बढ़ाऊं। दूसरी दलील, इमाम हुसैन मदीना से कूफा की तरफ ही क्यों गए, किसी और जानिब क्यों नहीं गए, डायरेक्ट शाम की जानिब क्यों नहीं गए? अगर इमाम का जंग का इरादा होता तो इमाम कूफा का रुख क्यों करते, शाम की जानिब चले जाते, दारुल हुकूमत तो वहीं था। कूफा की जानिब इसलिए गए कि कूफे से इमाम को कई हजार, बाज में 18,000, बाज तारीखी कुतुब में 32,000, इमाम को कई खतूत मौसूल हुए थे जहां कूफा वालों ने ये इकरार किया था, फरजंदे रसूल हमारे दिल आपकी नुसरत के लिए आमादा है, हम आपकी मदद को तैयार हैं। इमाम हुसैन उस हस्ती को कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, जुमला आपकी शादाब समातों के हवाले कर रहा हूं। इमाम कूफे की जानिब गई ही इसलिए थे क्योंकि उस वक्त कूफे वालों ने ये इकरार किया था कि हम दिल से आपकी नुसरत और आपकी हिमायत के लिए आमादा हैं। अइम्मा ताहिरीन सरों पर हुकूमत करने नहीं आए थे कि तलवारों के जोर पर हुकूमत करते, तलवार के जोर पर हुकूमत बदन पर की जाती है, तलवार के जोर पर हुकूमत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक हाकिम जिंदा है। आले मोहम्मद दिलों पर हुकूमत करने आए थे, यही वजह है कि 1400 बरस गुजर गए मगर हुसैन की हुकूमत आज भी दिलों पर कायम है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बात वादे हो रही है, तवज्जोहात मेरे साथ है अजीजों। इमाम ने कूफे का रुख ही इसलिए किया था कि मोमिनीन दिल से आमादा थे, यही वजह है ना कि जब मुस्लिम की शहादत की खबर आई और इमाम को मालूम हुआ, जाहिरी तौर पर, हकीकत में तो इमाम सब कुछ जानते हैं, जाहिरी तौर पर इमाम तक ये खबर पहुंची कि कूफे वालों ने साथ छोड़ दिया है, तो इमाम ने अपना रुख कूफे से भी तब्दील कर लिया। ये सब जाहिरी अंदाज में बातें हो रही हैं, वरना अगर गैबी जंबा देखा जाए तो रसूल बता चुके थे हुसैन आपको कत्ल होना है। तवज्जो कर रहे हैं, ये सब आइम्मा ताहिरीन जाहिर पर अमल करने के मामूर थे। बात आएगी इंशाल्लाह मौका हुआ तो। इमाम हुसैन ने अपना रुख कूफे से क्यों तब्दील किया, क्योंकि इमाम हुसैन असलहे के जोर पर फतह हासिल करना नहीं चाहते थे, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं निकले थे, इस्लाह के लिए निकले थे। तीसरी दलील पेश करूं अजीजों, तवज्जो मेरे साथ है, कि जब इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम को फुरात के करीब पहुंचा तो हुर के, जो बाद में हुर अलैहिस्सलाम हो गए, 1,000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आया। जुहैर कैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है, मौला हुसैन कैसा रहेगा कि अगर हम यही इनसे जंग करके इन्हें हलाक कर दें, क्यों, क्योंकि इनके बाद जो आने वाले हैं वो बहुत बड़ी फौज है, उनके मुकाबले में ये हमारे लिए कुछ हैसियत नहीं रखते। अगर आका हुसैन को जंग करनी होती तो पहले ही उस लश्कर को खत्म कर देते और फुरात पर अपने कब्जे को बाकी रखते। नहीं, हुसैन ने अपनी खैमा बस्ती को मुंतकिल किया। हजरते जुहैर कैन को क्या जवाब दिया? अब एक जाहिरी वजह है, एक हकीकी गैबी वजह है। गैबी वजह क्या है कि इमाम जानते थे यह हुर पलट के हक की तरफ आएगा। जाहिरी वजह क्या है, क्या कहा जुहैर से? कहा कि मैं पसंद नहीं करता कि मैं किताल और जंग की इब्तिदा करूं, ये दिफा नहीं है तो और क्या है। अल्लाह अकबर। अगर यहां तक बात वाजे हो गई, इमाम जमाना का दिफा पेश करना चाहता हूं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम जमाना भी जब जुहूर फरमाएंगे तो अपने जद रसूल अल्लाह और अपने जद हुसैन की सीरत पर चलते हुए फकत दिफाई अंदाज में असलहा उठाएंगे। ये भी बड़ी एक अजीब बात महसूस होती है मोमिनीन को सुनकर, आज तक तो कुछ और सुन रखा है। अज़ान मोहतरम, इमाम जमाना के ज़हूर के बाद उनके उनके अफ़आल के 2 जंबे हैं, एक है इंतकाम खून हुसैन और एक है दुनिया को अदल इंसाफ से भर देना। जहां तक पहला जंबा है इंतकाम खून हुसैन, तो उस मामले में इमाम की तलवार चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, यहां तक कि हुसैन के कातिलों के तमाम हामियों नासिर खत्म ना हो जाए, यहां खून बहाया जाएगा। वो जो रिवायात है ना, खूब खून बहाया जाएगा, अक्सर इसी तावील में है, इसी बारे में है। लेकिन एक दूसरा जंबा रूए जमीन को अदलो इंसाफ से भरना है, तो क्या ये सारा काम इमाम असलहे के दौर पर फरमाएंगे? नहीं अजीजों, इमाम भी फकत वहां असलहा उठाएंगे कि जहां दिफा की खातिर असलहे की जरूरत होगी। इमाम का पैगाम लोग खुद ही तस्लीम करते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब ताबूत सकीना देखेंगे, मवारी से अंबिया बयान हो चुकी, तो अक्सर यहूदी ईमान ले आएंगे। जब हजरत ईसा को अपने सामने देखेंगे तो अक्सर ईसाई खुद ही ईमान ले आएंगे, और जो ईमान नहीं लाएंगे इमाम उनसे भी जंग नहीं फरमाएंगे जब तक वो जंग ना करें। इमाम फकत दिफाई जंग करेंगे। दलील क्या है? अबू बसीर छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम। तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी आखिरी जुमले इस अशरे के, बड़ी आपको जहमत दी, बड़ी आपकी समा खराशी की, खुदा आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बड़े सब्र ने, बड़े सब्र से आपने मतालिब को सुना, आखिरी जुमले फिर जहमतें तमाम। रावी अबू बसीर है, छठे इमाम की खिदमत में आकर सवाल करता है, मौला मादा यकून बे अहले जिम्मत फी जमाने कायमकुम, मौला आपके कायम के जमाने में वो जो अहले जिम्मा होते हैं, काफिरों की दो किस्में होती है ना, एक काफिर हरबी हुआ करता है जो उम्मत मुस्लिमा या मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग करे, एक काफिर जिम्मी हुआ करता है जो काफिर तो है, अपने दीन पर तो है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया है, अमनो आश्ती से रहना चाह रहा है। अबू बसीर ने पूछा, मौला इमाम जमाना की कुफारे जिम्मी के साथ क्या सीरत होगी, अगर जंग ही करनी होती, अगर तलवार की नोक पर कलमा ही पढ़ाना होता तो इमाम जमाना पढ़ा लेते ना, उनसे ज्यादा ताकत किसमें है। लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं, यतसालमु माहुम कमा तसालम जद्दुहु रसूलिल्लाह, जिस तरह रसूल ने अपने जमाने में फिदक के ईसाई यहूदियों से और मदीने के गिर जो यहूदी आबादियां थी, जिस तरह रसूल ने अपने जमाने में काफिर जिम्मी से सुलह फरमाई थी, इसी तरह इमाम जमाना भी उनसे अमनो आश्ती का मुआमला करेंगे। यूतूनल जिज्यत अन यदिन वहुम सागिरून, जिस तरह रसूल के जमाने में काफिर जिम्मी का यह हुक्म था कि जिस तरह मुसलमान जकात और खुम्स दिया करता है, इसी तरह काफिर जिम्मी पर एक टैक्स लाजिम होता है कि जिसे जिजिया कहा जाता है, हमारे कायम भी कुफारे जिम्मी के साथ अमन के साथ मुआमला करेंगे और उनसे वैसे ही जिजिए को कबूल करेंगे जैसे रसूल अल्लाह किया करते थे। तवज्जो है, तो नतीजा क्या हुआ इस बहस का, इमाम जमाना भी फकत वही तलवार और असलहा चलाएंगे जहां पर दिफा मकसूद होगा, कभी जारहाना असलहा नहीं चलाते हमारे अइम्मा ताहिरीन, ना रसूल की ये सुन्नत है और ना अइम्मा ताहिरीन अलैहिम अफदलुस सलाति वस्सलाम की ये सुन्नत है। हिकमत अमली और स्ट्रेटजी का आखिरी नुक्ता फकत इशारा करके गुजर जाऊंगा, जो इमाम हुसैन और इमाम कायम के जमाने में मुश्तरक है और दर हकीकत ये हर इमाम के जमाने में मुश्तरक है, वो क्या है कि अइमा के पास विलायत तकवीनी हुआ करती है, अगर सूरज को इशारा कर दें तो पलट जाता है, दरख्त को इशारा कर दें तो आ जाता है, मुर्दे पर जनाजा, जिंदे पर जनाजा पढ़ा दें तो मर जाता है, अगर चाहे तो आसमान से फरिश्ता दर्जी बन के आ जाता है, अगर बद्दुआ कर दें तो लोगों पर बिजली गिरती है वो हलाक हो जाते हैं, ये सारी गैबी ताकतें, ये सारी विलायत तकवीनियां अइमा के पास है, लेकिन इसके बावजूद अइमा दुनिया में जब हिदायत का काम करते हैं तो बुनियादी तौर पर बशरी और जाहिरी तकाजों के मुताबिक किया करते हैं, हमेशा मोजजात से मदद नहीं लिया करते। यही वजह है ना कि रसूल के बाद इमाम अली इतने बरस क्यों खामोश रहे, क्योंकि अंसार नहीं थे क्या, अली अगर अपनी इलाही कुव्वत दिखाते, जब यदुल्लाह के हाथ में जुल्फिकार होती थी तो क्या कोई अली के नजदीक भी जा सकता था, नहीं अजीजों, अली जाहिरी तकाजों, जाहिरी हालात पर और उनके मुताबिक अमल करने के पाबंद है, ये खुदा की मर्जी है और अइमा खुदा की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं किया करते। इसी तरह इमाम हुसैन ने भी करबला में जो जंग लड़ी वो जाहिरी हालात और तकाजों के मुताबिक लड़ी, इमाम जमाना भी जो रूह जमीन को अदल इंसाफ से भरेंगे वो सब के सब जाहिरी तकाजों और हालात के मुताबिक भरेंगे। हाँ, खुदा ने उन्हें विलायत तकवीनी दी ही इस वजह से है कि जब जाहिरी हालात के मुताबिक हदफ इलाही को हासिल करना मुमकिन ना रह जाए, जब बहुत ज्यादा रुकावटें आ जाएं तो ये अपनी गैबी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि रुकावटों को खत्म किया जाए। यही वजह है कि वो हुसैन जो करबला में फकत 72 के साथ आया है और जाहिरी एतबार से जाहिरी हालात के मुताबिक जंग लड़ रहा है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां जुहैर कैन को दो उंगलियों के बीच में मोजजे के तौर पर उसका मकाम दिखला देते हैं, जुहैर इमाम से मरऊब हो जाता है, इमाम के दीन पर उनके रास्ते पर आ जाता है, जहां जरूरत पड़ती है लोगों पर हुज्जत तमाम करनी हो, जब उस सामने वाले लश्कर से किसी लाइन ने कहा था कि हुसैन तुम्हें वल अयाज़ु बिल्ला दोज़ख में जाने की जल्दी है, तो इमाम हुसैन ने अपना गैबी, अपनी गैबी ताकत दिखाई, विलायत तकवीनी दिखाई, मोजजा दिखाया ताकि जो लोग हैं उन्हें हिदायत मिल जाए। जाहिरी एतबार से हिदायत कर ली इमाम ने, खुतबात इरशाद दे दिया, हुज्जतें तमाम कर ली इमाम ने, दुआ किया अल्लाहुम्मा जुरहु इलन नार। रिवायत के अजीब जुमले हैं, घोड़े पर सवार था, घोड़े ने अचानक बिदक कर दौड़ना शुरू किया, ये मोजिजा ही तो है हुसैन का, घोड़े ने अचानक बिदक कर दौड़ना शुरू किया, घोड़े की पुश्त से जमीन पर गिरा, लेकिन गिर नहीं पाया, इसका एक पैर घोड़े की नाल में फंस गया। नतीजा क्या हुआ, घोड़ा इसको जमीन पर घसीटता हुआ उस आग में धकेल गया कि जो इमाम हुसैन ने अपने खैमों के पीछे लगाई हुई थी, जो खंदक खोदी हुई थी। ये क्या है, ये मोजिजा दिखलाया, लेकिन कहां पर, कि जहां जरूरी हो जाए, जहां इसके बगैर चारा ना हो। खुद खैमे के पीछे खंदक का खोदना क्या है, जाहिरी असबाब के मुताबिक अमल करना है कि खैमों की पुश्त से हिफाजत की जा सके। तवज्जो कर रहे हैं, इसी तरह इमाम जमाना भी जब जहूर फरमाएंगे तो जाहिरी असबाब के मुताबिक अमल अंजाम देंगे। जहां जाहिरी असबाब के मुताबिक अमल अंजाम देना मुमकिन नहीं होगा, वहां इमाम जमाना मोजजात और गैबी ताकत का इजहार करेंगे। अगर ये इजमाल और खुलासा आपके लिए वाज है तो एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीजों, बात को यहीं छोड़े जा रहा हूं। हमने कोशिश ये की इन 11 दिनों में, इन 11 तकरीरों में, कि आफाके महदवियत के पहले उफुक यानी इमाम जमाना का अकीदे से, अकायद से, उसूल दीन से क्या गहरा ताल्लुक है, इसे बयान करें। अभी बहुत सारे आफाक बाकी रह गए, खुदा ने तौफीक दी तो फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। बस ये आखिरी तकरीर के जिसका अनवान है शाम वतन, इस तकरीर को शामे वतन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस तकरीर में, इस मजलिस में अहले हरम के लुटे हुए काफिले की मदीना आमद को पढ़ा जाता है। दोपहर में रोजे अरबाइन के मसाइब में आप सुन चुके कि शाम से अहले हरम का काफिला चला है, एक दोराहे पर पहुंचा है। बीबियों ने ये गुजारिश की इमाम वक्त को, चौथे इमाम को, कि हमें पहले करबला की समत जाना है। इमाम जैनुल आबिदीन बीबियों को करबला लेकर आए। हर बीबी ने जब दिल खोल के अपने प्यारे की कब्र पे उसका मातम कर लिया, तो अब अहले हरम करबला से मदीने चले हैं। अल्लाह अकबर। जब अहले हरम मदीने के करीब पहुंचे हैं, मदीने की दीवारें नजर आई हैं, तो अली की शहजादी जनाब उम्मे कुलथूम का वो मशहूर मरसिया जिगर फटता है। आप जरा तसव्वुर कीजिएगा, वो बीबियां कि जब 60 हिजरी में 28 रजब को मदीने से निकली थी, तो हर बीबी की गोदी आबाद थी, हर बीबी का सुहाग आबाद था, हर भाई, हर बहन का भाई जिंदा था, हर माँ का बेटा उसके पास था। ये कैफियत थी अहले हरम की। किस दिल के साथ, किस बोझ के साथ आले मोहम्मद जब दोबारा ये काफिला मदीने के करीब पहुंचा है, कैफियत क्या होगी तसव्वुर कीजिएगा। यकीनन बीवियों को ये ख्याल भी होगा, अरे अभी जाकर जनाबे उम्मुल बनीन से सामना होगा। कैसे बताएंगे कि उम्मुल बनीन आपके 4 बेटों ने क्या कुर्बानी दी, कैसे बताएंगे उम्मुल बनीन आपके अब्बास के शाने कट गए। अब मदीने जाएंगे, बीवियों को ख्याल होगा। अब ये जुमला मैं कह रहा हूँ, आप सुनिएगा और इसका हक अदा कर दीजिएगा। मुझमें जितनी ताकत बाकी रह गई है उतनी ताकत से मैं मसाए पेश करता चला जाऊंगा। बीबियां मदीने के करीब पहुंची होंगी तो उन्हें ख्याल आया होगा, अरे मदीने में तो फातिमा सुगरा का सामना होगा। अजरकुम अल्लाह, कैसे कैसे बताएंगे जब सुगरा अली अकबर का सवाल करेगी। अरे अली अकबर की शहादत तो बता सकते हैं, लेकिन अगर सुगरा ने कहीं अपने नन्हे भैया अली असगर का सवाल कर लिया तो बीबियों के पास क्या जवाब होगा। अरे अगर सुगरा ने अपनी नन्ही बहन सकीना को याद कर लिया तो बीबियां क्या मुंह दिखाएंगी। अरे यही ख्यालात थे, यही बोझल दिल था कि जो बीबियों को मदीने के अंदर दाखिले में परेशान कर रहा था। यही वजह तो है कि जब मदीना करीब आया, इंतहाई गम के अंदाज में शहजादी उम्मे कुलचूम की सदा और फरियाद बुलंद हुई। शहजादी ने मरसिया पढ़ा, मदीना तुजद्दिना ला तकबलीना, فبالحسرات والأحزان جئنا نہ کر قبول، اللہ اکبر، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو۔ اے مدینے، جب ہم گئے تھے تو سہاگ آباد تھے، گودیاں ہری بھری تھی، مانگے سجی ہوئی تھی، اب جب آئے ہیں تو سہاگ اجڑ گئے ہیں، گودیاں اجڑ گئی ہیں۔ اے مدینے گئے تھے تو بھائیوں کو بیٹوں کو لے کر گئے تھے، لیکن جب آ رہے ہیں تو فقط حسرتوں اور غموں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، جب مدینہ قریب پہنچا، میرے چوتھے امام نے حکم دیا یہاں خیمے لگا دیے جائیں، خیموں کو نصب کیا گیا، چوتھے امام کے لیے ایک کرسی لگائی گئی، اور بشیر بن نعمان کہ جو شام سے امام زین العابدین کے قافلے کے ہمراہ تھا، امام نے اسے مخاطب کر لیا، رحم اللہ ابا کا کان شاعرا، خدا تیرے بابا پر رحم کرے، مجھے یاد ہے وہ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہہ لیتا ہے؟ اللہ اکبر، شعرا اپنی اہمیت کو محسوس کرے، کبھی آل محمد کے راستے سے نہ ہٹیے گا۔ فرما کہتا ہے، جی مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ اب چوتھے امام نے اسے فرمایا کہ جاؤ اور مدینے میں مسجد نبوی کے کنارے کھڑے ہو کر ہماری آل رسول کے لٹے ہوئے قافلے کی آمد کا اور واپسی کا حکم، واپسی کی خبر سناؤ۔ بشیر بن نعمان کہتا ہے، میں مدینے میں داخل ہوا، بڑے ہی بھاری اور بھوجل قدموں کے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے یہ خبر مدینے والوں کو دوں کہ مدینے کے جو شہنشاہ ہے، مدینے کے جو تاجدار ہے، مدینے کے جو رونق ہے، وہ اب باقی نہ رہی۔ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے قریب آیا اور میں نے مرثیے کا ایک مصرع کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، عزاداروں، گریے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، نہیں معلوم اگر برس یہ روزے اربعین، یہ شام وطن نصیب ہو نہ ہو، دل کھول کے گریہ کرنا۔ یہ بشیر بن نعمان عجیب منظر لکھتا ہے، کہتا ہے میں یہ صدا دے رہا تھا کہ اچانک ایک کمسن بچہ، ایک انتہائی خوبصورت بچہ کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند تھا، کہنے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بشیر، یہ بتاؤ کیا آل رسول کا قافلہ آ گیا؟ کیا حسین کا قافلہ لوٹ آیا؟ میں نے نہا میں سر ہلایا، کہنے لگا، یہ بتاؤ کیا میرے بابا بھی ساتھ آئے ہیں؟ کہنے لگا، میں نے یہ سوال سنا، میں تڑپ گیا، میں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا، میں وہی فضل ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے بابا کو ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے۔ بشیر کہتا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، میں نے فقط اتنا کہا، اے شہزادے جائیے، کالا لباس زیب تن کر لیجئے، اے شہزادے جائیے، اپنے سر پہ خاک ڈالیے کہ آپ یتیم ہو گئے ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بہت مختصر کرتا چلوں، عزاداروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جتنی طاقت ہے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جسے جتنا گریہ نصیب ہو جائے، آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ نہ جانے کس دکھی دل کے ساتھ مدینے داخل ہوا۔ اللہ اکبر، شہزادی زینب فرماتی ہے، بیٹا سجاد، میں نانا رسول خدا کی خدمت میں جا رہی ہوں، میں ان کے پاس اپنی فریاد کروں گی، میری شہزادی مدینے میں اپنے نانا کے روضے پر آتی ہے، ایک مرتبہ نانا کے سامنے آ کر حسین کے مسائل بیان کرنا شروع کیے، مسجد نبوی میں زلزلہ آنے لگا، شہزادی نے خود کو قبر رسول پر گرایا اور خوب گریہ کیا، دل بھر کے ماتم کیا، یہاں تک کہ جب قبر رسول سے نکلی ہیں، اللہ اکبر، سننا، جگر پھٹتا ہے ان مصائب کو سن کے عزیزو، جب اب مسجد نبوی سے نکلی ہیں تو شہزادی زینب علیا اپنے گھر تشریف لے گئی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ زینب علیا جبل صبر ہیں، صبر کا پہاڑ ہے وہ زینب، کے جس نے کربلا میں اپنے آن و محمد کو کبھی گریہ نہیں کیا، उस शहजादी के जिसने करबला से कूफा, कूफा से शाम की राह में कभी अपने बच्चों के सर की तरफ निगाह नहीं की, वो शहजादी के जब तबर्रुकात शाम में लाए जा रहे थे तो अपने औनो मोहम्मद के सर को अपनी गोदी तक में नहीं लिया और क्या कहा, मैं अली की बेटी हूँ, सदका देकर वापस नहीं लेती, लेकिन माँ का दिल भी तो है शहजादी ज़ैनब के सीने अकदस में। अरे कब तक बर्दाश्त करती, एक मर्तबा जब अपने घर के सहन में तशरीफ लाती है अचानक उस चबूतरे की तरफ निगाह पड़ी के जहाँ मोहम्मद बैठा करते थे, माँ के दिल ने अब बर्दाश्त नहीं किया, फूट फूट कर रोने लगी, ऐ मोहम्मद माँ को माफ कर देना। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। इसी असना में अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार घर में तशरीफ लाते हैं, क्या मंजर देखते हैं कि एक बुढ़िया है, एक नहीफा है, एक ज़ाइफा है कि जो मेरे घर के सहन में बैठी है। कहते हैं मुअज्जमा मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी मेरी जौजा घर पे नहीं है। शहजादी ने इन जुमलों को सुनना था, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ अब्दुल्ला क्या तुमने भी अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाना। अब्दुल्ला चीख मार के रोते हैं, ज़ैनब जब गई थी तो बाल से आते, कमर झुकी हुई नहीं थी, जब आई है तो ये क्या आलम हो गया है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्ज़हरा। मेरी शहजादी की आदत थी कि माँ की कब्र पे हमेशा रात की तारीकी में जाया करती थी। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू के ये जुमले पढ़ रहा हूँ अदादारों, वहाँ का किबला फरमाते हैं कि जब मगरिब का वक्त गुजर गया, शहजादी कहने लगी, ऐ मेरे शौहर नामदार, ऐ अब्दुल्ला रात तारीख हो गई है, मैं चाहती हूँ कि अपनी माँ की कब्र पर हाजिरी दूँ। शहजादी चली है, माँ की कब्र के नज़दीक आई है। अरे एक जुमला सुनना और फिर रोना। अरे 28 रजब को जब इमाम हुसैन माँ की कब्र से विदा कर रहे थे ना, तो आका घुटनियों के बल चल के उस तरह गए थे कि जैसे कोई कमसिन बच्चा अपनी माँ की आगोश में चला जाता है। आज जब शहजादी ज़ैनब माँ की कब्र पे जाना चाहती हैं तो वही अंदाज अपना लिया, अपने आप को ज़मीन पे गिराया, घुटनियों के बल चलती हुई माँ की कब्र पर आई है। अरे बेटियों वाले बैठे हो ना, जानते हो बेटियां बहुत सब्र करती हैं, बहुत जब्त करती हैं, लेकिन जब बेटी माँ से मुलाकात करती है तो अपने दिल का हाल खोल कर रख देती है। अरे शहजादी ज़ैनब कूफा और शाम की सताई हुई है, हर जगह सब्र करती आई है, लेकिन माँ की कब्र पे पहुंचकर जब्त का यारा न रहा, माँ की कब्र पे गिरा दिया है। माँ कौन से मसाइब बयान करूं, ऐ माँ हमारी चादरों को लूटा गया, ऐ माँ ये देखो मेरे बाजुओं पर रस्सियों के नील है, ऐ माँ अगर तुम पूछोगी कि हुसैन के साथ क्या हुआ, जवाब में खून भरा कुर्ता लाई हूँ। ये कहकर शहजादी ने माँ की कब्र पे हुसैन का कुर्ता रख दिया, कब्र फातिमा में जलजला आने लगा। ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار إلها تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اس ذکر کا، تجھے واسطہ شہزادی زینب کی غربت کا، تجھے واسطہ اہل بیت کی اسیری کا، بار الہا ہماری ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے، بار الہا ان مجالس کے صدقے میں ہمارے قلوب میں وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، بار الہا हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। बारे ला जो हाजरीन सुन रहे हैं, जो सामईन हैं, तमाम की दिली हाजात को बर फरमा। बारे ला बानियान की जहमतों को कबूल फरमा। बारे ला इमाम बारगाह के इन खुद्दाम की तौफीकात में इजाफा फरमा। बारे ला गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। बारे ला आइंदा बरस का अरबईन करबलाए मुअल्ला में नसीब फरमा। दुनिया में बार बार आका हुसैन की जियारत, आखिरत में मौला की शफाअत नसीब फरमा। बारे ला दुनिया में जहाँ कहीं मोमिनीन आबाद हैं, जो जायरीन अबू अब्दुल्ला अल हुसैन हैं, तमाम को हर बला और हर वबा से महफूज फरमा। बारे ला जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। बारे ला हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, उनके दरजात में बुलंदी इनायत फरमा। बारे ला सबसे बड़ी दुआ सबसे बड़ी आरजू, मुंजिए बशर मुंतकिमे करबला, फरजंद जहरा कायम आले मोहम्मद के दहूर में ताजील फरमा, और हमें उनके खास आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम, बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन। मातम हुसैन।
बार मोहम्मद।